Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7117. And 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Aaj shanivar hai, aaj hum aapke prashnon ko bhi seedhe program mein shamil karenge. Sawal poochne ke liye aap hame in numberon par call kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2371-7117 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली.
नमस्कार प्राची, नमस्कार राजेश और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
थैंक यू.
विद अ वार्म वेलकम शरद, वी बैडली नीड दिस वार्म. हेडलाइंस: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस लॉग लॉसेस दिस वीक. India's इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स रीच $31 billion टिल नवंबर दिस ईयर. Fastest growing among top 30 export sectors, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. And major US stock indices display mixed performance this week.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में इस सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात इस वर्ष नवंबर में $31 अरब तक पहुंच गया है. ये शीर्ष 30 क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है. और इस सप्ताह प्रमुख अमरीकी शेयर सूचकांकों का प्रदर्शन मिला जुला नजर आया.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
रुक करते हैं पहले खबर की तरफ. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे सप्ताह घाटे के साथ बंद हुए. भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के अधिकांश समय उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही. इसके प्रमुख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी, रुपए के कमजोर होने और वैश्विक अनिश्चितताओं के बढ़ते प्रभाव रहे. दोनों ही सूचकांकों में 5 कारोबारी सत्र में से 4 में गिरावट देखी गई. हालांकि सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन अनुकूल वैश्विक संकेतों, विशेष रूप से उम्मीद से कम अमरीकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट के कारण निवेशकों के आत्मविश्वास के दम पर बाजार में तेजी आई. सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 348 अंक यानी कि 0.4% गिरकर 84,929 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 81 अंक यानी 0.3% गिरकर 25,967 पर बंद हुआ. वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिलाजुला रुझान देखने को मिला. मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.17% की गिरावट दर्ज की गई. विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 1.13 रुपया मजबूत होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 89 रुपये और 29 पैसे पर बंद हुआ।
We've got two callers online with us, one from Delhi, the other from Bombay. First, we move to Bombay with Nikhil. A warm welcome, Nikhil. Please ask your question.
A very good evening to all the panel.
Good evening.
I had one question regarding metal shares, and in particularly copper shares, copper metal. What do you think is the future for us? 6 months? How should the stocks performing in this vertical perform? Thank you.
All right, Nikhil, that's an interesting question. Well, copper seems to be, you know, one of those metals which is in demand, and you know, quite like gold and silver, copper movement may not be as quick the way gold and silver has been, because it doesn't necessarily attract that much of investment. It is more used for consumption. But I see the future of copper, nickel, very bright, because, you know, people were tracking it ever since it was 900, then it crossed about 1,000, then it went up to 1,100. So I think copper, I am personally very, very optimistic on copper, because the demand for copper for consumption in various kinds of commodities seem to be on an upsurge. And there has been a shortage of copper observed on many occasions. So therefore, I think you can select good stocks where copper is their basis, copper is their main line of business. And I'm sure if you keep them for a long term, they are expected to give better returns. Although, as the disclaimer goes in the beginning, which Rajesh read, that you must consult your individual investment advisor, your financial advisor. But personally speaking, I do feel copper is the commodity to go for in the times to come. Nikhil.
दिल्ली से हमारे साथ अभिषु जुड़ रहे हैं। अभिषु जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
अ वेरी गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज दैट रुपी इज फॉलिंग अगेंस्ट डॉलर डे बाय डे, सो व्हाट अ पर्सन एज अ इंडिविजुअल नीड्स टू टेक केयर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द करंट सिनेरियो लाइक इन द शेयर मार्केट मेटल इंडस्ट्री दैट वी हैव प्रीवियसली टॉक अबाउट द कॉपर, डू रियली अ इंडिविजुअल नीड टू स्ट्रेस आउट और जस्ट इज जस्ट इकोनॉमिकल इश्यूज दैट वी आर फेसिंग सर? थैंक यू।
Well, good question, Abhishu. I must say, I really don't think a common man should be worried about rupee dollar price until and unless it starts impacting your own budget. And when does it impact your budget? You see, because like 87% of our oil exports, oil imports, we are dependent on crude oil import. So, but luckily what has happened, Rajesh and Prachi, that ever since rupee started weakening, the good thing which happened, which neutralized the impact, was that crude oil prices, they started going down. I mean, from 65, they came down to 62, 63. And as we speak today, the crude prices are around less than $60. So I think it's been a bit of a blessing for us, a neutralizer for us, because on one side, when the rupee became a bit weaker, crude oil prices went down. So that has sort of neutralized the impact. So I really don't think, Abhishu, a common man should be worried. Some of the imported items, I think people who are worried are the people who send their children abroad for studying, or who are majorly importing something, because after all, you have to make your payments in foreign currency and you have to shed out more rupees to buy that foreign currency. But I don't think common man should be worried unless inflation starts shooting up, because there are a lot of raw material and other merchandise which we import. There is a substantial import that we do every month. So unless it converts to inflation and then in turn converts to your pocket, I really don't think you should be worried. It's as you rightly said, it's more of a macroeconomic news, interesting for some people to watch and talk about. And some people also, you know, tend to politicize the issue. But I really don't think that is a
matter. But it augurs well for the IT sector.
Oh, yes, for the exporters, yes. Export is the only sector which stands to benefit out of a falling rupee. Well, rest every other sector, you know, sometimes it becomes a matter of concern. But luckily, our economy and our economic parameters are not bad at all. So therefore, I think the common man is not really impacted. It's just I think it's a matter of discussion wherever you go these days. Rupee is falling and dollar is strengthening. I think it's just a matter of discussion. But good, you're keeping track. I must appreciate that.
From Mumbai, we are joined in by Sanjay. A warm welcome, Sanjay. Sanjay, we can't hear you. Okay, do try and give us a call again, Sanjay. Amit is next on the call with us, and he's from Delhi. A warm welcome, Amit.
Hello, sir.
जी, सवाल पूछे।
नमस्कार सर, कोहली सर का नमस्कार सर।
नमस्कार अमित।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी के ऊपर पूछ सकते हैं
जी, फ्यूचर एंड ऑप्शन
के, फ्यूचर एंड ऑप्शन के पूछ सकते हैं?
पूछिए पूछिए।
हाँ सर, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मान लो निफ्टी, मान लो आज एक्सपायरी है 16 दिन के मान के चलिए, मंगलवार को एक्सपायरी होती है, तो सोमवार को जो क्लोजिंग बेस होता है, लाइक मान लो 25,000 की मान लो क्लोजिंग है निफ्टी की हो रही है, तो 25,000 वाली कॉल और 25,000 वाली पुट दोनों ही एट द मनी में आती है, ठीक है सर? बट इसमें क्या रहता है, दिक्कत क्या रहती है सर, कि मान लीजिए एट द मनी में 70 की कॉल की प्रीमियम रहती है और 70 रुपए पुट की प्रीमियम रहती है
जी।
तो दूसरी चीज, अगर मान लो कल के डेट में मान लीजिए 100 पर भी ऊपर खुल जाती है, तो 70 रुपए वाली चीज प्रीमियम बढ़ने के बजाय उसे प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है सर। पुट का तो समझ में आता है, चलो पुट ऊपर खुली तो पुट डाउन खुलेगी, निफ्टी ऊपर खुली है तो, वैसे ही अगर मान लो डाउन खुलती है 100 पॉइंट निफ्टी नीचे सर, तो पुट को बढ़ना चाहिए, तो पुट की जो वैल्यू होती है लमसम लमसम वही रहती है, थोड़ा और भी रिड्यूस हो जाती है प्रीमियम, तो सर ये कितना प्रीमियम बना के क्यों रखते हैं सर? थैंक यू सर।
अमित का सवाल बहुत टेक्निकल है और जो लोग राजेश और प्राची डेरिवेटिव्स में ऑपरेट करते हैं ये उनके मतलब का सवाल है। अमित, ऐसा होता है कि एक्सपायरी से पहले जो प्रीमियम्स होते हैं कॉल और पुट पर, उसमें एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो क्या होता है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उससे एक शाम पहले वो उसकी वैल्यू, हम लोग उसको बोलते हैं मेल्ट डाउन हो गया, तो आपको वो वैल्यू मेल्ट होती दिखती है। तो इसलिए, हालांकि बहुत टेक्निकल सवाल है, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। तो होता क्या है कि जनरली जो लोग कॉल और पुट प्रीमियम में डील करते हैं तो हाई प्रीमियम डेज होते हैं जब एक्सपायरी के फौरन बाद होता है। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं तो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेल्ट डाउन होती जाती है। इसलिए आपको कॉल और पुट में, तो आप एट द मनी अगर कॉल लेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या होगा, अगले दिन सुबह वो मेल्ट होती, थीटा डिके भी बोलते हैं उसको, वो मेल्ट होती दिखाई देती है। धन्यवाद राजेश इशारा करने के लिए। बिल्कुल उसकी वैल्यू, क्योंकि थीटा लोग समझते नहीं है, मैंने उसको साधारण भाषा में करके बताया कि वो मेल्ट होती जाती है, तो इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है। पर अमित और बाकी श्रोताओं को मैं एक बात बिल्कुल दिल से बताना चाहता हूं, हमारे दोनों माननीय एंकरों की इजाजत लेके, कि डेरिवेटिव्स में अगर आप करते हैं तो सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 90% लोग उसमें पैसा गवा देते हैं। तो अमित आप कर रहे हैं, मैं हम आपको कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, पर मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा और सभी श्रोताओं को कि इसमें बहुत संभल के चलिए, आपकी खून पसीने की कमाई है, मेहनत का पैसा है। लंबी अवधि के निवेशकों ने मार्केट में, मेरा 35 साल का तजुर्बा ये कहता है कि लंबी अवधि के निवेशकों ने पैसा बनाया है। छोटी अवधि में आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं और बड़े बड़े शार्क्स जो होते हैं ना, बड़ी मछलियां, वो इस डेरिवेटिव्स में पैसा बनाते हैं। छोटे निवेशक बेचारे कई बार उनके उनको पैसा गवा बैठते हैं। तो ध्यान से करेगा अमित, मैं उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा।
मुंबई से हमारे साथ नितिन जुड़ रहे हैं। नितिन जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो
जी, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार जी,
मेरा सवाल ये कि रेलवे सेक्टर के बारे में मुझे पूछना है। पूरा एक साल से रेलवे सेक्टर डाउन है, ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहा है, पर रेलवे का मतलब मूवमेंट नहीं है
जी। नितिन जी देखिए, मार्केट में क्या होता है कि सेक्टर रोटेशन होता रहता है और सेक्टर रोटेशन मार्केट का स्वभाव है। कभी आपको FMCG ऊपर जाता देखेगा, कभी रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर जाता देखेगा, पीछे जब जियोपॉलिटिकल टेंशन थी तो डिफेंस ऊपर जा रहा था, कभी फार्मा IT जैसे पिछले साल हमने देखा थोड़ा दबाव में रहा कभी। तो हर सेक्टर का एक हिंदी का गाना है, अपना टाइम आएगा, ऐसा कुछ है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर ये बोलता है कि अपना भी टाइम आएगा। तो मुझे लगता है सेक्टर रोटेशन होता रहता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं नितिन, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेलवे में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो रहा है और भारतीय रेल सेवाओं में जिस प्रकार से अपग्रेडेशन हो रहा है, भारतीय रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह दिखने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो नितिन आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर साल में सेक्टर रोटेशन की वजह से उसमें थोड़ी सुस्ती रहती है, तो उससे कोई विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए जी।
फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो
जी, अपना सवाल पूछिए।
हाँ नमस्कार, मार्केट मंत्रा टीम।
नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
सर मैं फरीदाबाद से सुभाष बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता था सर कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद सर ये उस वेरिफिकेशन भी हो गया, रिफंड भी आ गया, उसके बाद अभी दिसंबर में मेरे पास एक मेल आया कि आपको दोबारा से रिटर्न फाइल करना है, तो ये इसमें समझ नहीं आ रहा लॉजिक।
अच्छा, तो सुभाष ऐसा होता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी एक सेक्शन 143 सब सेक्शन वन होता है, उसके अंतर्गत एक एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम समरी असेसमेंट कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आप फाइल करते हैं तो जो सीपीसी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, उसकी एक प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग कर देता है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जब उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड कैलकुलेशन करता है, तो ऐसा अक्सर होता है कि आपको रिटर्न रिवाइज करने के लिए कहा जाता है, कम होता है पर ऐसा हो सकता है कि आपको, हो सकता है कई बार सिस्टम में प्रोसेसिंग में गलती हो। गलती खाली टैक्स पेयर के एंड से नहीं होती, कभी कभी आयकर विभाग की तरफ से भी कोई चीज ओवरलुक गलती से हो जाती है। तो अगर आपको दोबारा उन्होंने कहा है रिवाइज करके फाइल करिए, तो आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आप इसका, अगर मुझे कभी मौका मिला सीबीडीटी तक आपकी बात पहुंचाने का, मैं, आपका कंसर्न बहुत जेन्युइन है कि एक दफे रिफंड आ गया, पैसा भी दे दिया, हमने रिफंड खा पी के सेलिब्रेट भी कर लिया, पार्टी भी कर ली, और फिर उसके बाद हमसे कहा गया कि आप रिटर्न रिवाइज करिए, तो ये भी हो सकता है वो कल को आपको डिमांड रेज कर दें। ऐसा कभी कभी हो जाता है सुभाष जी। मैं कोशिश करूंगा आपकी इस समस्या को अपने लेवल पे, अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला, इसको हम सीबीडीटी तक पहुंचाएं कि एक दफे रिफंड आ गया तो उस पर ढक्कन लगा देना चाहिए, उसको बार बार मतलब वो मजे जो ले चुका है वो मजे वापस नहीं लिए जाने चाहिए।
मूविंग ऑन, वॉल स्ट्रीट क्लोज्ड हायर यस्टरडे एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टॉक्स रीगेन्ड देयर फुटिंग आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वोलेटिलिटी। Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged 1.3%, the S&P 500 advanced almost 0.9%, the Dow Jones Industrial Average added nearly 0.4%. For the week, Nasdaq advanced almost 0.5%, while the S&P 500 eked out by 0.1%. However, the Dow slipped almost 0.7%. In the fixed income markets, U.S. Treasury yields rose in line with global bond yields on Friday after the Bank of Japan raised interest rates. At the same time, investors continued to evaluate delayed economic releases and the direction of Fed policy.
Delhi se hamare saath Virendra jud rahe hain. Virendra ji, apna sawal
puchiye. Sabko namaskar.
Namaskar.
Dr. Kohli.
Ji.
Mera ek prashn thoda hatke hai.
जी,
लेकिन मुझे कहीं इसका उत्तर मिला नहीं है, इसलिए आप तक पूछना चाहता हूँ मैं। जब हम कभी रिकवरी सूट डालते हैं अपना पैसा रिकवर करने के लिए
जी,
तो उसकी फीस देनी पड़ती है कोर्ट में, 3% 2% जो भी है
जी।
एक कई प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो लोग देने लायक नहीं है, वो पैसे नहीं दे पाते और लुट चुके होते हैं, उनको ऐसा होता है कि छूट मिलती है किसी प्रोविजन में, ऐसा कोई प्रोविजन में जानना चाहता हूँ।
वीरेंद्र जी, ऐसा कोई, आप देखिए कोर्ट से जब भी कोई मामला फाइल करते हैं, मैं क्योंकि एक वकील भी हूं तो शायद मैं आपकी बात का जवाब दे पाऊंगा। जब आप फाइल करते हैं तो कोर्ट का जो समय होता है, कोर्ट के जो एफर्ट्स होते हैं, कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कोर्ट की फी होती है। ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, आप एक स्पेशल पिटीशन मूव करके, जैसे कोई व्यक्ति बहुत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है या बहुत ज़्यादा पुअर सेक्शन से आता है, उसके पास नहीं है, तो आप एक स्पेशल एप्लीकेशन मूव कर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें वेवर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता, पर अमूमन वीरेंद्र जी ऐसा नहीं होता है। बिना कोर्ट फी दिए आप रिकवरी का फाइल नहीं कर सकते, आपको कोर्ट की जो बेसिक फीस होती है वो देनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप तो देने में सक्षम होंगे, अगर नहीं सक्षम है तो आप इस पे ट्राई कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन मूव करके, हो सकता है आपको वेवर मिल जाए, वैसे मुझे इसका चांस कम लगता है।
केशव फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस नाउ। केशव, अ वार्म वेलकम।
हेलो, नमस्कार सर।
जी, सवाल पूछे
सर। मुझे एक टीडीएस के ऊपर बात पूछनी है
जी,
कि जैसे सर हमारा टीडीएस कट गया था और हमने H15 फॉर्म ब्रांच वालों ने हमारा भराया नहीं
जी,
तो उस कारण से हमारा टीडीएस कट गया और हमारा एक फंड विड्रॉ हुआ था, तो उसमें उनको चाहिए था कि हमारा H15 फॉर्म भरा जाए
जी,
उसकी वजह से हमारा टीडीएस कट गया। अब टीडीएस तो बहुत ज्यादा नहीं है, अब मुझे ये बताया गया था कि आपको अटाई भरनी पड़ेगी, अगर हमने एक बार भर दी उसके बाद नेक्स्ट हमें हर साल भरनी पड़ेगी, यही कन्फ्यूजन है। और अगर हम ये टीडीएस को कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो कट गया कुछ जाने देते हैं, तो हमें फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हमें छुट्टी तो देना ही है।
केशव जी, पहले तो H15 ने 15H होता है फॉर्म, उसका नाम 15H है। आपने बताया कि हमें बिल्कुल आप रिटर्न भर के अपना पैसा वापस ले सकते हैं, और अगर आपने एक बार भर दी और अगले साल मान लीजिए आप टैक्सेबल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है भरना। अगर आपके पास नोटिस आता है, लेटर आता है, तो आप बता सकते हैं कि मैं टैक्सेबल लिमिट से नीचे हूं। आपने दूसरा बात बड़ी इंटरेस्टिंग पूछी कि इस पीछे हम छोड़ दें अपने टीडीएस को, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जिस व्यक्ति का टैक्स कट गया है एट सोर्स, उसको रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है। तो आपके सामने ये चॉइस नहीं है, ये अब आपकी एक कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप ना केवल कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे बल्कि अपना पैसा चाहे थोड़ा सा भी है, हम तो मानते हैं चाहे 100 रुपये भी क्यों ना हो, पैसे का निरादर नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप हक बनता है तो आपको वापस लेना चाहिए, और अगले साल अगर आपका नहीं बनता है तो आप बेशक मत फाइल करिएगा। ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार फाइल कर दी तो आपको हमेशा फाइल करनी, ऐसी गलत धारणा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो मैं उम्मीद करता हूं केशव जी कि आपकी ये गलतफहमी दूर हो गई होगी और आप फाइल करके पैसा लीजिएगा। जब पैसा आ जाए तो हमें फोन करके बताइएगा भी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात $31 अरब तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर एक लेख को साझा करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में निर्यात के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भारत के शीर्ष 30 क्षेत्रों में शामिल है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि इस वृद्धि से रोजगार, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिला है। आशुतोष ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल है ये।
That was a misprint there. We now have Mumbai, from Mumbai, Ratnakar with us. A warm welcome.
Hello, hello. Good evening, sir.
जी.
मेरा सवाल है कि अभी फ्राइडे मार्केट तो चढ़ी थी, लेकिन पास 8-10 दिन का रिकॉर्ड देखा तो मार्केट नीचे जा रहे हैं, और अपना जो डॉलर के हिसाब से रुपया भी नीचे जा रहे हैं, तो उसका दोनों का कुछ कोरिलेशन है क्या? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि जो कैपिटल गेन हमारा आता है
जी,
वो AIF में दिखता है क्या, और वो किधर दिखता है, तो हम कैसे वो मालूम कर सकते हैं कैपिटल गेन कितना हो गया?
जी रत्नाकर जी, मार्केट आपने कहा कि नीचे जा रहा है, उधर हमारा डॉलर भी डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 2 दिन में रुपये ने रिकवर किया है और अब हमारा 90 से इम्प्रूव कर गया, अब हम 89.29 के आसपास हैं इस समय रुपए का। RBI ने इंटरवीन किया है और इससे रुपया रिकवर किया है, पर कोरिलेशन है। अगर डॉलर कमजोर, अगर रुपया कमजोर होता है तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से नहीं देखता है, क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ एक्सपोर्ट वाली कंपनीज को फायदा होता है, ज्यादातर कंपनीज जो इंपोर्ट करती है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कॉस्ट बढ़ती है तो उनकी बॉटम लाइन प्रेशर में आती है, तो इसलिए मार्केट जो है उसको, तो ये कोरिलेशन रहा। दूसरा आपने पूछा आपका कैपिटल गेन AIS में, AIS का मतलब होता है, प्राची और राजेश बताना चाहूंगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, मैंने उसको नया नाम दिया है आईना, इसे समझिए क्योंकि ये आपके ट्रांजैक्शंस का आईना आपको दिखा देता है। तो बिल्कुल रत्नाकर जी, AIS में कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख से ऊपर का कोई मकान बेचा है, वो आपको वहां दिखाई देगा, आपने शेयर्स के माध्यम से कुछ कैपिटल गेन कमाया है। कुछ लोग तो उसको जादू समझते हैं, कैसे पता लग जाता है डिपार्टमेंट को, आपके पैन नंबर से ट्रैक होता है, तो बिल्कुल वहां दिखाई देता है। और कैपिटल गेन आप AIS से उठाएंगे, उसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, वो आपको अपनी यूटिलिटी में जब आप जाएंगे, जिसको हम शेड्यूल CG कहते हैं, उसमें भरेंगे तो वो कैलकुलेशन अपने आप करेगा। तो AIS कैलकुलेशन नहीं करके देगा, AIS तो आपको वो ट्रांजैक्शन बताएगा जिसमें आपने कैपिटल गेन किया है। मैं उम्मीद करता हूं अगली बार आप इसको उठा भी पाएंगे और यूटिलिटी में डाल के कैलकुलेट भी कर पाएंगे।
नेक्स्ट कॉलर इज आशुतोष एंड इट सेज ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाई प्राची वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड, सो वाज आई। सो आशुतोष, आर यू कॉलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया?
ही मस्ट बी क्वाइट लेट ओवर देयर, इजंट इट?
Yes sir, I am calling from Australia. Namaskar Kohli ji, namaskar market
mantra ji. Namaskar, must be midnight over there.
काफी काफी लेट हो गया सर, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम सुनते रहता हूँ, चूंकि आज सैटरडे है तो यहाँ पे एक्चुअली 12:15 आई थिंक हो रहा है।
yeah, yeah.
तो बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आप लोग का। सर मेरा 2 क्वेश्चन, एक तो बहुत बेसिक और लेमेन सा क्वेश्चन है मे बी, एक है कि शेयर मार्केट में जनरली देखा जाता है कि जब हम खरीदते हैं, जब खरीदारी का दौर होता है तो शेयर का भाव उठता है, और जब बिकवाली का होता है तो गिरता है
जी।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि खरीदते हैं तो फिर जब हम खरीदते हैं तो कहीं कोई बेचता है तभी हम खरीदते हैं, या फिर हम जब बेचते हैं तभी कोई खरीदता है, तो फिर ये कैसे गिरता और बढ़ता है? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये हुआ कि हर तरफ से ये है कि इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं हमारे मार्केट पे। ये SIP भी बढ़ रहा है, नए नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं। अब तक
चलिए आशुतोष का दूसरा सवाल तो पूरा नहीं हो पाया। इसको मार्केट साइक कहते हैं कि जब हम, ऐसे लगता है लोगों को जब हम खरीद रहे हैं तो महंगा है, जब बेच रहे हैं तो सस्ता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये चिंता नहीं होती, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ये चिंता होती है। अब आशुतोष जी आपसे संपर्क टूट गया, आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़े, हमें इस बात की खुशी है। अगली बार आपकी बात का और विस्तृत इसका जवाब दिया जाएगा कैसे होता है इसके पीछे। इसको मार्केट साइक कहते हैं और ये बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है, पर लॉन्ग टर्म बनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। जी
दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी कृपया अपना सवाल पूछिए।
जी आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि एक सैलरी अकाउंट जो होता है नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होता है जब हम कोई जॉब चेंज करते हैं, तो उस केस में अगर हमें किसी बैंक अकाउंट को बंद करना हो तो उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो हमारे को उस बैंक से उस अकाउंट के बारे में ले लेने चाहिए, लाइक बैंक स्टेटमेंट एक हो सकता है, क्या इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें
लेने चाहिए? योगेश दो ही चीजें आपको लेनी चाहिए, एक तो आपको, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि बंद होने के बाद आपको रिट्रीव करने में दिक्कत होती है। दूसरा अगर कोई टैक्स कटा है तो उसका फॉर्म 16A आपको बैंक से ले लेना चाहिए, हालांकि वो आपके 26AS में, AS को मैं आमना सामना बोलता हूं, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है, पर फिर भी आपको ये दो चीजें ले लेनी चाहिए। बाकी तो क्या, बाकी बैंक मैनेजर उनके फोन नंबर वंबर लीजिए, कभी पुरानी यादें बैठ के साथ चाय वाय उनके साथ बैठ के आप साझा कर सकते हैं।
मूविंग ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स एट इट्स 620th मीटिंग हेल्ड इन हैदराबाद यस्टरडे। The approval follows the central bank's statement in October in which it proposed a risk-based premium model. The board also discussed global and domestic economic situation and associated challenges and the draft report on the trend and progress of banking in India 2024-25. Sharad, how important is this framework?
Well, I think there is an act in 1962 where, you know, the premiums imposed by DICGC is 12 paisa per 100. I think that needs, probably that is an outdated thing, and it's quite an old act. So that might be under revision where a risk-based premium may be charged to banks. So, I mean, what will be the criteria? Probably capital adequacy norms, or it could be liabilities or assets. I think that will be decided by the RBI board. But principally, it's about deciding the premiums. I think another decision Rajesh taken was about 25 basis point cut, which RBI did recently. One of the reasons was that the inflation was significantly low. So not many people know that a very low inflation also prompts, you know, this kind of a decision, because it can indicate slowing of the economy. However, that may not be the case with India.
So what is your expectations from the market in the coming?
Well, I think market is going through a bit of a tough time. It is stuck in a range, you know, 25,500 to probably 25,500 to 26,000. It seems to be range bound. Having said that, Rajesh, I must say that in 2025, the market has given about 18 to 19% return as we talk today. So market hasn't done all that bad. It may be range bound as of now. So I think it'll all depend upon India-US trade deal. I would say that's the next best trigger, which we're expecting probably in a couple of weeks.
Government has invited suggestions and ideas from the citizens for the upcoming budget 2026-27 in February. Their recommendations can be sent to the MyGov portal at www.mygov.in.
कोहली जी कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
माई प्लेजर, थैंक यू।
एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस लॉग लॉसेस दिस वीक। इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स रीच्ड $31 billion टिल नवंबर दिस ईयर, फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग टॉप 30 एक्सपोर्ट सेक्टर्स, सेज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। And major U.S. stock indices display mixed performance this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
मोहब्बत।